شروع کر لیتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تو آج ہم اگلا ٹاپک پڑھنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ, جو ہمارے حضرت کے سلسلہ دروس ہیں امور خانداری میں حسن انتظام میں سے. تو پہلا ٹاپک جو ہم نے پڑھا وہ ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ تھا, جس کو کہ امور خانداری, یہی تھا اصل میں جو کتاب کا موضوع بھی ہے, تو وہی جو ہے وہ ہم نے انتظام خانہ عنوان سے پڑھا. اس کو پڑھ کے الحمدللہ پچھلی کلاس میں مکمل کیا, اور آج جو ہے وہ رشتے داریاں نبھانا, ریلیشن شپ مینجمنٹ, صفحہ نمبر 121 کے اوپر یہ ہے کتاب کے اندر, اور امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ شیئر بھی ہوگا. کیا ہو رہا ہے اب, اور جو شیئر ہو رہا ہے تو ہماری ونڈو بند ہو گئی ہے, تو دوبارہ سے کھلنی پڑے گی. اچھا چلے, آسانی سے ہو گئی. اچھا, تو ریلیشن شپ مینجمنٹ جو سلیکٹ کیا یا سلیکٹ ہو گیا, تو پہلے چیز سلیکٹ ہو گئی, بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی دل میں ڈالی. کہ اس لیے کہ باقی سارے ٹاپکس کو پڑھا تھا تو سب میں کوئی ایسی ایسی باتیں تھیں جو کہ بعد میں بھی کی جا سکتی تھیں, یا جن کی پرائیورٹی جو ہے وہ بعد میں آ رہی تھی. اور رشتہ داریاں نبھانا جو ہے اس کے اوپر گویا کہ دل ٹھک گیا کہ یہی پڑھنا چاہیے. پھر بعد میں خیال آیا کہ واقعی اس کا تو تعلق بہت ہی اہم ہے, اور عورت کے ساتھ اس کا یعنی بالکل ہی ترجیحی بنیاد کے اوپر یہ ٹاپک عورت کے لیے اہمیت رکھتا ہے. تو وہ کیسے, کہ جیسے کہ پچھلی بھی بہت ساری کلاسوں کے اندر بات ہوتی رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندیوں کو, عورتوں کو, خواتین کو دنیا کے اندر ایک تو عمومی رول دے کر کے بھیجا, عمومی رول جنرل, جو کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے, سیم ہے. وہ کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ٹھیک ہے, تو جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی, چاہے ان کے اندر میل جن ہو چاہے فیمیل جن ہو, ٹھیک ہے, میل ہیومن بینگز ہوں یا فیمیل ہیومن بینگز ہوں, ان سب کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری بندگی کریں. ٹھیک ہے, تو بندگی جو ہے یعنی عبادت, بندگی, سلیو ہوڈ, ٹھیک ہے, سلیو ہوڈ انگریزی میں اس کا ایسے ہی پراپر ترجمہ بنتا ہے. تو یہ سب کا مقصد زندگی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس بندگی کو کرنا کیسے ہے, طریقہ کیا ہوگا اس بندگی کا, تو وہ تھوڑا تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے, نماز دونوں کے لیے سیم ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. جنوں کی نماز کا بھی ہمارا یہی یعنی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جو دین ہے جس کے اندر پانچ نمازیں فرض ہیں, تو یہی دین جو ہے پھر جنوں کے اوپر بھی فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا خیال ہے, یعنی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, کہ جنوں کے اوپر بھی پانچ نمازیں ہی فرض ہیں. ہو سکتا ہے اس کی دلیل کہیں پڑھی بھی اور بھی ذہن میں نہیں ہے. تو جن مرد, جن عورتیں, انسان مرد, انسان عورتیں, سب کے اوپر جو ہے وہ عبادت لازم ہے, لیکن طریقہ کیا ہے وہ تقریباً سیم ہے. تقریباً اس لیے کہا کہ بھائی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تو سیم ہے, لیکن अब आपको पता है कि नमाज जो है वो मर्दों के ऊपर तो हर सूरत में और हर हाल में और हर वक्त फर्ज है, उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन औरतों के लिए एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, हैज, नफास वगैरह के जो मामलात होते हैं तो उनके अंदर जो है वो औरतों के ऊपर नमाज नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये फर्क हो गया ना मर्दों और औरतों के दरमियान नमाज के अंदर ही, ठीक है। उसी तरीके से हज की इबादत है, तो अब हज की इबादत जो है मर्द को जब उसकी मालियत और सेहत इजाजत देती है और पीछे जो है वो इंतजाम करने वाले लोग मौजूद हों, जब ये तीन शर्तें पूरी होती हैं तो मर्द के ऊपर हज फर्ज हो जाता है। लेकिन औरत के ऊपर इन तीन के अलावा एक चौथी शर्त भी है, वो क्या कि महरम साथ सफर करने वाला हो, ठीक है ना। अब मर्द के लिए महरम की शर्त नहीं है, ठीक है, औरत के लिए महरम की शर्त है, तो फर्क हो गया ना दोनों की इबादतों के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से एहराम मर्द का मुख्तलिफ है, औरत का एहराम मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये फर्क हो गया औरत और मर्द के दरमियान, इवन इस तरह की जो जो इबादतें कहलाती हैं सुतून नमाज के, ये दीन के सुतून वाली इबादतें जो कहलाती है, ठीक है, तो इन दोनों में भी फर्क हो गया मर्द और औरतों के दरमियान। उसी तरीके से जो इन इबादतों के अलावा वक्त होता है इंसान की जिंदगी में, रोजाना के हिसाब से पांच नमाजें फर्ज हैं, उसके अलावा भी तो इंसान की जिंदगी है ना, तो उस वक्त कौन सी वाली इबादत कर रहा होता है इंसान, औरत हो या मर्द हो, तो पांच नमाजों के वक्त के अलावा कौन सी इबादत कर रहा होता है, ठीक है। तो वो इबादत जो है वो उस वक्त जो अल्लाह का हुक्म उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो उसके लिए इबादत है, अगर उसके ऊपर अमल करेगा या करेगी वो उसके लिए इबादत है। वुजू, सॉरी, रोजे का फर्ज सिर्फ 30 दिन साल के अंदर, तो बाकी जो 11 महीने हैं उनमें वो कौन सी बारी इबादत कर रही होती है, ठीक है, उसमें तो रोजे की इबादत नहीं कर रही होती है, नफली इबादत की बात नहीं कर रहा है, फर्ज इबादत की बात कर रहा है। फर्ज इबादत तो सिर्फ रोजे की साल में एक एक महीना होती है, तो बाकी महीनों में क्या इबादत नहीं कर रही, तो फिर वो क्या कर रही है, ठीक है, या मर्द है तो वो क्या कर रहा है, यानी फारग बैठा हुआ है, या जिसको हम कहते हैं कि बंदगी नहीं कर रहा तो क्या गंदगी कर रहा है, क्योंकि बंदगी के अलावा दूसरी चीज सिर्फ गंदगी होती है, या तो आप बंदगी कर रहे हैं या फिर आप गंदगी कर रहे हैं। तो क्या एक ईमान वाला, एक मुत्तकी परहेजगार इंसान क्या जिस वक्त रोजे की इबादत नहीं कर रहा, नमाज की इबादत नहीं कर रहा, जकात की इबादत नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है, गंदगी कर रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, गंदगी तो तस्वुर ही नहीं है, गंदगी तो मुमकिन ही नहीं है, गंदगी की तो एक लम्हे के लिए इजाजत नहीं है, ठीक है, गंदगी से मुराद रूहानी गंदगी, गुना, उसकी तो एक लम्हे के लिए भी इजाजत नहीं है ना, तो फिर क्या कर रहा है भाई, उस लम्हे उसके ऊपर जो अल्लाह का हुक्म अप्लाई हो रहा है उसको करना उसके लिए बंदगी, ठीक है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात दिए तो उन अहकामात के लिए अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा जो है वो एक एक निजाम भी दिया, ठीक है, कि भाई इस निजाम के तहत जिंदगी गुजारना, जो निजाम मैंने इंसान के लिए बनाया है ये उसके लिए बंदगी, और अगर उस निजाम को छोड़ करके वो किसी और का बनाया हुआ निजाम, जो कि अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, किसी और का बनाया हुआ निजाम है, जैसे शैतान का, इब्लीस का बनाया हुआ निजाम, उसके तहत जिंदगी गुजारेगा तो वो गंदगी कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगर हम निजाम की बात करते हैं तो फिर 24 घंटा, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक एंड 365 डेज ए ईयर, ठीक है, निजाम में रह करके जिंदगी जो गुजारेगा अल्लाह के बनाए हुए, तो वो बंदगी कर रहा होगा और कर रही होगी, और अगर अल्लाह के बनाए हुए निजाम से हट करके वो जिंदगी गुजारेगा या गुजारेगी, ठीक है, 365 डेज ऑफ अ ईयर, तो वो गंदगी कर रही होगी या गंदगी कर रहा होगा, यानी गुनाह, ठीक है। तो अब औरत के लिए अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया और मर्द के लिए क्या निजाम बनाया, इनमें एक बुनियादी फर्क जो है वो कुरान मजीद से ही हमें सूरह ताहा की एक आयत की तफसीर के अंदर ये चीज बड़ी क्लियरली आ जाती है कि मर्द के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो कमाने और प्रोवाइड करने का निजाम बनाया है, ठीक है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जा करके फतश्का का हुक्म लगाया, ठीक है, सूरह ताहा के अंदर, जहां पर ये वाली वाला वाकया है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है और अम्मा हव्वा दोनों को जो है वो जमीन पे अल्लाह ताला ने उतार दिया और उनसे ऐसे फरमाया, दोनों से ऐसे फरमाया, दोनों से ऐसे फरमाया, दोनों से ऐसे फरमाया, लेकिन दोनों की बात करते करते एकदम से अकेली की बात कर दी कि आदम अलैहिस्सलाम को जाकर के मुशक्कत करनी, ठीक है, कमाने की मुशक्कत, खिलाने की मुशक्कत बाहर से, तो वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के लिए, अम्मा हव्वा के लिए नहीं, ठीक है। तो अम्मा हव्वा जो है उनका रोल डिफरेंट हो गया, उनका रोल जो है फिर घर के अंदर हो गया, और कुरान के दूसरे मुकामात से भी इसकी दलील साबित है, वकरना फी बुयूतकुन्ना, तो बिल्कुल सराहतन अल्लाह का हुक्म, और बाकी जो है वो इशारतन अल्लाह ताला के पसंद नापसंद का पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो औरतों को घर के साथ जोड़ रहा है, औरतों को घर के साथ जोड़ रहा है, वो इशारतन है, लेकिन सराहतन एक्सप्लिसिटली करना फी बुयूत, ठीक है। तो घर की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने औरत को दे दी, घर की जिम्मेदारी औरत को दे दी कि औरत ने घर में रहना है, जब घर में रहेगी तो गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ नहीं रहेगी बल्कि जिम्मेदारी पूरी करेगी, और मर्द बाहर निकलेगा तो गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बाहर वक्त नहीं गुजारेगा कि जो है वो हवाखोरी कर रहा है और कहीं जा पे जाके जो है वो चाट मसाले खा रहा है, तो कहीं पे जाके बिरयानी खा रहा है, तो कहीं पे जाकर के सिगरेट पी रहा है, तो कहीं पे बैठ करके वो कैरम खेल रहा है और कहीं पे जाकर के क्रिकेट खेल रहा है, तो कहीं पे जाकर के फुटबॉल खेल रहा है, क्योंकि भाई बाहर की जिंदगी वो मर्द के लिए है, तो जा करके ये हरकतें कर रहा है नहीं। अगर ये हरकतें करेगा बाहर निकल करके, उसको सजा मिलेगी, अल्लाह ताला की नाराजगी मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। बाहर निकल के तुमने काम करना था, ठीक है, कमा के लाना था, और दीन की दावत की मेहनत करनी थी और जिहाद की मेहनत करनी थी बाहर निकल करके, ये नहीं कि तुमने जो है पकौड़े खाने थे जाकर के बाहर जाकर, ठीक है ना, हवाखोरियां करनी थी बाहर जाकर के, ठीक है। तो जो करेगा वो खुद उसको भुगतेगा, ठीक है, और जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कमा करके लेकर के आएगा और दावत तबलीग और जिहाद का काम करेगा, वो अल्लाह ताला का पसंदीदा बन जाएगा। उसी तरीके से औरत की घर की जिम्मेदारी लगाई, अब घर में बैठ करके वो चैटिंग कर रही है और गॉसिपिंग कर रही है और स्लैंडरिंग कर रही है और टीवी देख रही है या दूसरे किस्म की, तो फिर उसको सजा मिलेगी, जिस तरह मर्द को बाहर निकल करके पकौड़े खाने के ऊपर सजा मिलेगी, उसी तरह औरत को घर में बैठ करके उल्टे सीधे हरकतें करने के ऊपर सजा मिलेगी। लेकिन घर की जिम्मेदारी को एडॉप्ट को अपने जिम्मेदारी समझना और उसके ऊपर फिर उसको अंजाम देना, इसके ऊपर को उसको जजा मिलेगी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का निजाम औरतों मर्दों के लिए मुख्तलिफ हो गया, ठीक है, जैसे कि नमाज के अंदर औरतों मर्दों के दरमियान मुख्तलिफ है, हज के मामले में भी औरतों मर्दों के दरमियान मुख्तलिफ अल्लाह ताला के तकाजे हैं, उसी तरह घर और बाहर के तकाजे भी अल्लाह ताला ने दोनों के लिए मुख्तलिफ बना दी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है मर्द घर के अंदर नहीं आ सकता और औरत घर के बाहर नहीं जा सकती, ऐसा तो नहीं है ना कि मर्द घर के अंदर नहीं आएगा, उसका काम बाहर का है, अब वो बाहर ही रहे, राइट, अब वो बाहर ही रहे, अंदर नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, मर्द घर में आएगा, राइट, और घर की जो है वो सहूलतें जो है वो उनको इस्तेमाल करेगा, उनसे फायदा उठाएगा। उसी तरीके से औरत भी जब बाहर निकलने का मामला होगा तो वो बाहर जाएगी, ठीक है ना, बाहर की जरूरियात को पूरी करेगी, हत्ता के मर्द की ये जिम्मेदारी भी है कि वो औरत को जो है वो बाहर लेके भी जाए कि भाई थोड़ा सा चेंज भी हो उसके लिए, ना थोड़ा सा क्या, बल्कि अच्छा खासा चेंज जितना भी मुमकिन है चेंज के लिए उसको बाहर लेकर के जाए, ठीक है, उसको जो है वो हवाखोरी के लिए लेके जाए, उसको जो है वो किसी साइट सीइंग के लिए लेकर जाए, उसको जो है अपने रिश्तेदारों के पास लेकर के जाए, उसको हज उमरे के लिए लेकर के जाए, ठीक है। तो बाहर निकलना औरत के लिए भी है जिस तरह मर्द के लिए, घर के अंदर आना भी, ठीक है, लेकिन बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर, ठीक है। तो अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया क्लास के अंदर वो थी घर की मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तेदारियां निभाना, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर बन गया या हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, तो इस ऑर्डर के अंदर फिर अगर हम आपसे पूछें, थोड़ी आपकी भी, तुम अब इतनी देर से आप सुनी चली जा रही हैं, अब आप भी कुछ पार्टिसिपेट करें कि ये जो ऑर्डर बन गया या हमने इख्तियार कर लिया, पहले हाउस होल्ड मैनेजमेंट फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस ऑर्डर या हाउ विल यू एक्सप्लेन द हिकमत बिहाइंड दिस ऑर्डर, विजडम बिहाइंड दिस ऑर्डर, कि पहले हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ा फिर उसके बाद रिश्तेदारियां निभाना पड़ा, आप क्या क्या जवाब देंगे? जब तक आप जवाब दें हम इनका लिखा हुआ मैसेज पढ़ देंगे, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज में कुछ लिखा है। While listening this class, what niyat we have to do? Because in this case, Shaitan is provoking. रिश्तेदारी निभाना means we assume everything. हम तनकीदी नजर से सुन रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं या बुरे हैं। हमको अपनी इस्लाह के लिए सुनना है only. How this is possible? We will definitely think about others. चलिए, माशाल्लाह, नीयत क्या होनी चाहिए वो तो आपने खुद ही लिख भी दिया है और बिल्कुल सही लिखा है कि अपनी इस्लाह की नीयत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको जवाब पहले से पता है अपने सवाल का, ठीक है, लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है ना, वो उसका जवाब शुक्र है आपने नहीं लिखा है, मतलब ये कि उसका जवाब आपको पूछना है। वो दूसरा इनका सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है, हम जब इस क्लास को सुन रहे होंगे तो हमारा ध्यान तो दूसरों की तरफ जा रहा होगा कि वो अपनी रिश्तेदारी नहीं निभा रहे, वो अपनी रिश्तेदारी नहीं सही निभा रहे, तो हम क्या करें उसमें? हम ये करें कि जैसे ही आपका जहन दूसरों की तरफ जाए ना, दूसरों की इसलाह, दूसरों के ऊपर तनकीद, तो फौरन उस वक्त जो है वो दिल ही दिल में, कम अज कम अगर जुबान से नहीं भी तो कम अज कम दिल ही दिल में, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि ये गोया कि एक गुना है जिसके ऊपर मुझे इस्तग़फार करने की जरूरत है, फौरन इस्तग़फार करें, ठीक है, और अपनी तवज्जो को फोर्सफुली वापस लेकर के आए अपनी इस्लाह की तरफ, कि मैं जो सुन रही हूँ ये मैं अपनी इस्लाह के लिए सुन रही हूँ, ठीक है। जैसी दूसरे के तनकीदी निगाह जाए, फौरन अस्तग़फ़ुर, अस्तग़फ़ुर, तनकीदी निगाह के ऊपर अस्तग़फ़ार पढ़ना, ठीक है, जैसे कि ये गुनाह है, तनकीदी निगाह इस्तग़फ़ार पढ़ना है जैसे कि ये गुनाह कर रहे, ठीक है, और फिर अपने आप को फौरन रीफोकस करना, रीफोकस करना, ठीक है, खैर ख्वाही की नीयत से कि हम दूसरों को भी बताएंगे, ठीक है, अपनी इसलाह के लिए सुन रहे हैं, लेकिन अपनी इसलाह के साथ साथ हम दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएंगे कि भाई उनका भी फायदा हो जाए, ये खैर ख्वाही की नीयत, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तनकीदी नगा ये बुरी बात है, इसके ऊपर फौरन इस्तफार पड़ जाएगा। अच्छा, अब ये किसी ने जवाब दिया है कि पहले घर का संभालना सीखना होगा, ये ज्यादा जरूरी है, फिर ही हम सब फैमिली को निभा सकते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने एक हिकमत लिखी, ठीक है, जो कि चले आपका ये सोच है कि पहले घर को संभालना ज्यादा जरूरी है, फिर उसके बाद फैमिली को संभाल सकते हैं, तो चले ठीक, और ये एक वजह इन्होंने लिखी, और दो मे बी हम इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है आपने लिखी। अच्छा, दूसरा जवाब आया कि घर और फिर घर वालों को मैनेज करना, पहले घर को मैनेज करना फिर घर वालों को मैनेज करना, चलें ठीक है, और बिकॉज द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन दैट अ वुमन हैज इज विद हर हाउस एंड हाउस होल्ड मेंबर्स, एंड देन द नेक्स्ट लेवल दैट शी मस्ट फोकस ऑन इज मैनेजिंग रिलेशंस विद अदर फैमिली मेंबर्स, सो द ऑर्डर वुड थस फर्स्ट बी हाउस होल्ड एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, विद हर हाउस एंड हाउस होल्ड मेंबर्स, द हाउस होल्ड मेंबर्स ही तो रिश्ता भाई, ये रिश्तेदारी से मुराद यहाँ पर खाली जो है वो कजन या इन लॉज, ये वाली रिश्तेदारी की तो बात नहीं हो रही ना, तो घर में जो आपकी औलाद है वो भी तो आपके रिश्तेदार है, ठीक है, घर में जो आपके शौहर साहब हैं वो भी आपके रिश्तेदार में ही आते हैं, वो कोई और चीज नहीं है, वो भी रिश्तेदार है, अम्मा अब्बा वो भी रिश्तेदार है, ठीक है, तो अब हाउ आर यू प्रायोरिटाइजिंग दिस विद द हाउस, तो खैर मुझे आपकी बात नहीं समझ नहीं आई। अच्छा, और लिखा उन्होंने कि डॉटर लर्न्स टू हेल्प विद हर होम फर्स्ट, देन व्हेन शी बिकम्स ए वाइफ शी आल्सो लर्न्स टू मैनेज रिलेशनशिप, नहीं तो जब डॉटर होती है तो उसको अब्बा के साथ रिलेशनशिप नहीं करनी पड़ती, अम्मा के साथ ही करनी पड़ती, बहन भाइयों के साथ ही करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये तो शादी वाली रिलेशनशिप तो आपने अपनी तरफ से फिर ऐड करती है ना, हो That's not the only relationship. अच्छा, और इन्होंने किसी ने लिखा कि पहली जिम्मेदारी औरत पर घर की है और दूसरी जिम्मेदारी घर के बाहर, यानी रिलेशन, भाई घर के बाहर वही तो काम खैर उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, घर के अंदर जो लोग रहते हैं ना वो भी रिलेशनशिप में ही आते हैं। ठीक है चले। और किसी ने लिखा घर फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके बाद रिश्तेदार आते। भाई स्टॉप एज्यूमिंग दिस कि रिश्तेदार सिर्फ बार बार कार्ड आते, ठीक है ना। ये एजम्पशन खत्म करें तो फिर आप लोगों के खुद ही जवाब गलत हो जाएंगे। घर घर वालों से ही बनते हैं, दीवानों से नहीं बनते। तो नहीं तो आपने शेर व शायरी वाली बात कर दी भाई, हम तो प्रायोरिटी। अच्छा चलिए बस ठीक है, बहुत हो गए जवाब, अब कुछ और भी बात कर लेते हैं। सो अब जो उन्होंने लिख दिया उनका पढ़ लेते हैं, अब इसके मजीद मजीद बाद और कोई नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कोई ना लिखे, सब मेहनत करने के बाद भी पहले मेरे पीठ पीछे बुराई होता है तो बहुत बुरा लगता है, आगे करने का दिल नहीं करता फिर भी करना पड़ता है। सवाल के जिसका क्या ताल्लुक है, क्योंकि घर घर में रहने वालों से मिलकर बनता है। तो फिर तो घर को पहले फिर घर वालों को बाद में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सवाल तो ये है, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट से भी शौहर बच्चों के साथ अच्छा होगा रिलेशनशिप, शायद इस ऑलरेडी द फर्स्ट स्टेप। चलिए ठीक है, आपने शायद गौर करके जवाब लिखा, जब अंदर के हालात दुरुस्त होंगे तब वो बाहर, नहीं रिश्तेदार बाहर वालों को नहीं कहते, रिश्तेदार अंदर वालों को भी कहते हैं। पहले घर का माहौल अच्छी तरबियत हो या जरूरी है, ये जरूरी है, दिन दूसरे से ही संभल जाएंगे। ठीक है तो देखें, जब हमने खानादारी पढ़ा था, अमूरे खाना पढ़ा था और हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ा था ना, तो उसके अंदर आपको याद होगा कि हमने औलाद के ऊपर भी बात करी थी, ठीक है। लेकिन वो एक छोटा सा पोर्शन था उस पूरे बयान का, बाकी सारा का सारा जो बयान था ना वो था स्टोरेज मैनेजमेंट, बाथरूम मैनेजमेंट और कारपेट क्लीनिंग और किचन ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की बात, ठीक है। तो इसकी हिकमत क्या समझ में आती है, जो कि खुद जिस तरह आपको समझ में आएगी उसी तरह हमारी भी ऐसी समझ में आएगी, कि क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है ना किताब में, नाजुद्दीन ऐसी कोई बात लिखी है ना तो कहीं और में ऐसा लिखा हुआ। भाई कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात यह है कि इजी थिंग्स शुड गो फर्स्ट, ठीक है। पहले आसान चीज से शुरू करना चाहिए, पहले मुश्किल काम से शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भी ये तो चले बयानात है ना, लेकिन अदरवाइज कोई भी किताब हो, साइंस की किताब हो, ठीक है, या दीन की कोई किताब हो, या दुनिया की कोई भी किताब, आप आसान टॉपिक से शुरू करते हैं ना, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट थी ना, ये थी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है ना, अशिया के बारे में, दरो दीवार के बारे में, फर्श के बारे में, ठीक है ना। ये अशिया को संभालना, उनको साफ करना, उनको ठीक करना, क्या ख्याल है आपका, ये ज्यादा आसान काम है या शौहर को ठीक करना है, या औलाद को ठीक करना, या माँ बाप के साथ ठीक मामला करना, या जो है वो ससुराली रिश्तेदारों के साथ ठीक मामला करना, क्या ज्यादा आसान है आपके साथ, ठीक है ना। जिन्होंने करने की कोशिश करी है उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या चीज ज्यादा आसान। घर की सफाई वैसे तो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर बंदों की सफाई से आप उसको कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों के दरमियान ना, ठीक। अब तक जो अल्लाह वाले होते हैं, बुजुर्ग और बहुत मुत्तकी परहेजगार होते हैं और बड़ा उन्होंने इल्म भी हासिल किया होता है, वो क्या फरमाते हैं आप कई बार सुन चुकी होंगी, वो फरमाते हैं कि इंसान का इस दुनिया में आना आसान, लेकिन सही मानों में इंसान बन जाना मुश्किल काम है, जो बनता है या बनाता है वो पता पाता है, ठीक है ना। यानी इंसान की जो इस्लाह है ना, ठीक है, और इंसान के साथ इस्लाह करना, मामलात की इस्लाह करना, ये भी उसी में शामिल है। ये इतना मुश्किल काम है कि जो कोशिश करता है ना उसको लग पता जाता है, वो पता पाता है का मतलब उसको लग पता जाता है कि कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और यकीनन आप सबको इसका तजुर्बा अच्छा खासा होगा। तो इजी थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इजी थिंग्स हमसे पहले करवा दी, घर की सफाई वगैरह, अब जो है ना वो आई है असल मसला। लेकिन ये असल मसला भी जो है वो क्या है, क्योंकि घर के अंदर यही दो बुनियादी चीजें होती हैं, एक फिजिकल घर खुद होता है और एक जो है वो घर के रहने वाले होते हैं, ठीक ठीक है, तो इन दोनों चीजों को तो सबसे पहले हमने करना ही है, लेकिन किसको पहले करते किसको बाद में करते। तो जो आसान काम था वो पहले हो गया, अल्लाह ने करवा दिया, और जो अब मुश्किल काम है अब हम उसको शुरू कर रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेज। ठीक है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हजरत ने जो है वो जो खुतबे में आयत रखी, नबी अलैहिस्सलाम की बात रखी, अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में नकल फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को ये फरमाया, ठीक है, उसको अल्लाह ताला कोट फरमा रहे हैं अपने कुरान के अंदर कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई दुनियावी अजर नहीं मांगता कि तुम जो है वो मुझे तोहफे तहाइफ ला करके दो, तुम मुझे मिठाइयां ला करके दो, तुम मेरी जो है वो गले के अंदर हार डालो, ठीक है, या तुम जो है ना वो मेरी खिदमतें करो आकर के, मैं तुमसे ये कोई अजर को थोड़ी मांग रहा हूँ, तनख्वाह कोई थोड़ी मांग रहा हूँ तुमसे, जो मैं तुम्हें जहन्नुम से बचाने की मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुमसे कोई तनख्वाह नहीं मांग रहा इसके ऊपर, इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, लेकिन एक चीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो क्या कि तुम लोग कम अज कम मेरी रिश्तेदारी की जो तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं तुम उनका तो लिहाज करो, मेरी रिश्तेदारी की जो तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, क्योंकि उस जमाने में तो कम अज कम, आज तो ये सब कुछ बहुत खराब हो गया, बहुत बिखर गया ये रिश्तेदारियों वाला मामला, इंडस्ट्रियलाइजेशन और तरक्कियों की वजह से खानदान बिखर गए हैं, ठीक है ना, कोई दुनिया के एक कोने में रहते हैं, कोई दुनिया के दो कोने दूसरे कोने में रहता है, और आपस की ताल्लुकात वगैरह बहुत ही खराब हो चुके, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, इवन काफिर लोग भी मुशरिकीन भी जो हैं वो मिलजुल करके रहते थे और एक दूसरे की रिश्तेदारी का बहुत ख्याल किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम गोया के दुहाई दे रहे हैं उन लोगों को अपनी रिश्तेदारी का, कि इस रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए तुम मुझे तकलीफ तो मत दो और मेरे रास्ते में कांटे तो मत बिछाओ, राइट। अबू लहब जो सगा चचा था वो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जो है वो मार्केट में जाता था और गालियां दे रहा होता था, बुरे बुरे अलकाब, और लोगों को पुकार पुकार के कह रहा होता था इसकी बात मत मानना, इसकी बात मत मानना, हत्ता के और भी पत्थर मारने की भी कोशिश करी, और किसी ने तो कुछ जो दूर का रिश्तेदार था उसने तो थूक भी फेंकने की कोशिश करी थी नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर, ठीक है। तो रिश्तेदारी का ताल्लुक कितना अहम होता था कि नबी अलैहिस्सलाम दुहाई के लिए रिश्तेदारी को पेश करें, कम से कम इसका तो लिहाज कर लेते थे, ठीक है। तो इससे जो है वो बात को शुरू किया, और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि औरत की जिंदगी का एक कमजोर पहलू क्या है, ठीक है, यानी हमारे मुआशरे की औरत का की जिंदगी का, और वैसे भी तो दूसरे मुआशरे तो हमारे मुआशरे से भी गए गुजरे, तो इस वजह से अपने मुआशरे को के अंदर भी कमजोर पहलू जो कि हो गया है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। दुहाई यानी पूछ रही है कि दुहाई का मतलब क्या होगा, दुहाई का मतलब ये एक मुहावरतन इस्तेमाल होता है उर्दू जुबान के अंदर कि वास्ता देना, जैसे कहते हैं वास्ता देना, वास्ता देना भी आपको अगर नहीं पता तो फिर मैं क्या बताऊंगा, यानी अपने रिश्तेदारी का वास्ता देना कि भाई इसी का कुछ ख्याल कर लूं, इसी को दुहाई देना भी है। अच्छा, तो फरमाया कि आज की गुफ्तगू का उनवान है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तेदारियां निभाना, ठीक है, यानी उनको कैसे मैनेज करना है कि वो निभ जाए, टूट ना जाए। तो ये कि औरत जिंदगी में अपने रिश्तेदारी को अच्छा कैसे रख सकती, ठीक है। तो अब रिश्तेदारी जो है ये लफ्ज तो जो है ना वो यानी इसके अंदर कॉनोटेशन या इसके अंदर जो है वो जो मफहूम लिया जाता है आमतौर पर वो तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती है ना उन्हीं के लिए लिया जाता है, ठीक है, यानी जिनके साथ आपका जो है वो या तो ब्लड रिलेशनशिप हो, ठीक है, और या फिर आपका जो है वो ससुराली रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए रिश्तेदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, दोस्ती यारी के लिए रिश्तेदारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन्हीं दोनों के लिए, नसबों व सहरा, इवन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ये दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नसब यानी जो ब्लड रिलेशनशिप है, और सौत से सहरा ये ससुराली रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन हम आपको जो है ना वो अभी इस टॉपिक के ऊपर ऐसे ही नहीं शुरू करना चाह रहे, बल्कि हम एक और मफहूम लेना चाह रहे हैं रिश्तेदारी का, ठीक है, वो है लफ्ज रिश्ता से। रिश्ता मीनिंग ताल्लुक, रिश्ता मीनिंग ताल्लुक, कि आपका किसी के साथ ताल्लुक कैसा है, तो उस ताल्लुक को निभाना, ठीक है ना। यानी सिर्फ जो है वो नसबों व सहरा वाला ताल्लुक नहीं, बल्कि ताल्लुक का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी के साथ आपके रिलेशनशिप, किसी के साथ आपका ताल्लुक, उस हिसाब से हम देखना चाहते हैं इस मौजू को पहले। तो उस तरह से जब इस मौजू को हम देखते हैं, तो ताल्लुक में जो है ना, जो सबसे पहले ताल्लुक आता है और सबसे आसान ताल्लुक जो आता है, वो कौन सा ताल्लुक, वो किसके साथ ताल्लुक, ठीक है, जल्दी से कोई गैस करके बता दे। सबसे पहले औरत का किसके साथ ताल्लुक की बात आती है, और सबसे आसान ताल्लुक किसके साथ बन सकता है, अल्लाह। इनको तो अम्मा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता, अल्लाह करे आपको अम्मा से आगे भी कुछ नजर आना शुरू होता है, ठीक है, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह। तो सबसे पहले तो अल्लाह है ना, सबसे पहले तो अल्लाह का ताल्लुक है ना। और ये जो ताल्लुक है, अगेन गोइंग बैक टू आवर प्रिंसिपल, इजी थिंग्स फर्स्ट, आसान से काम शुरू करना चाहिए। तो अब इवन ताल्लुकात के अंदर भी जो सबसे आसान ताल्लुक है, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक है। और ये ऐसा ताल्लुक है कि अगर ये ताल्लुक हमारा अच्छा हो जाए, तो फिर इसके बाद बाकी जितने मुश्किल 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 ताल्लुकात हैं, वो सब भी अच्छे हो जाए, क्योंकि फिर अल्लाह जो है वो इस बात के ऊपर कादिर है कि वो फिर बाकी सारे मुश्किल ताल्लुकात को भी अच्छा बना दे, आसान बना दे, राइट। तो क्या ये अकल को सजता नहीं है, ये क्या ये कॉमन सेंस की बात नहीं है, क्या ये बुनियादी अकल की बात नहीं है कि भाई जिसने हर चीज को दुरुस्त करना है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, हम उसके साथ ताल्लुक अच्छा बना लें, बजाय इसके कि जो मुश्किल मुश्किल ताल्लुकात हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़े रहे, उनके पीछे पड़े रहे कि किसी तरीके से मेरा इसके साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, किसी तरीके से मेरा इसके साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, इसके साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, राइट। और इसके अंदर ही लगे रहे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी मेहनत में लग रही है कि शौहर के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, बाप के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, औलाद के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, चले अच्छा तो है ये काम के ताल्लुक अच्छा बनाने की मेहनत हो रही है, लेकिन अकलमंदी का तकाजा तो ये नहीं है ना। अकलमंदी का तो तकाजा था कि जिसके साथ ताल्लुक बनाने से सारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते थे, उसके तुम क्यों नहीं पीछे पड़ रहे, उसके लिए तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है ना, इसको इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब हजरत जी के पास तो जो उन्होंने ये बयान किया ना, तो आपको बताया है कि ये तो एतिकाफ के बयान थे, ठीक है, तो सुबह के वक्त जो है वो 1 घंटे का बयान औरतों में करना होता था, रात को जो है वो 1 घंटे का बयान मर्दों में होता था। अब उस 1 घंटे में तो हजरत जी सारी चीजों को नहीं लेकर के आ सकते ना, तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा पीर दुल्फकार अहमद ने अल्लाह के ताल्लुक के बारे में बात क्यों नहीं करी, आप ही कर रहे हैं खाली, आप ज्यादा अल्लाह वाले हैं, जैसे उन्होंने क्यों नहीं करी, वो भाई उनके पास 1 घंटा था, उनके पास एक रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्टेड टाइम नहीं है, अल्लाह की तौफीक से चल रहा है सारा का सारा मामला। तो हमने जो है ना, वो हजरत के 1 घंटे के बयान के ऊपर 15 घंटे तो लगाए हैं, उमूर खानदारी के अगर आप जाकर के देखें उसकी रिकॉर्डिंग्स, मेरे ख्याल में 15 क्लासेस के अंदर हमने 1 घंटे का बयान कवर किया, ठीक है ना। अगर 20 भी हो जाती है ना, तो भी कोई परवाह नहीं थी हमें, इस वजह से हम जो है वो पहले अल्लाह के ताल्लुक से क्यों नहीं बात करें। सही है, तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है वो फिर कैसे बनता है, ये भी कोई बता दे। अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है, उसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो अल्लाह ताला के साथ दुआ मांगना है, अल्लाह ताला से दुआ का ताल्लुक बनाना, ठीक है। जैसे कि पिछले बयान में भी इख्तिताम दुआ पर ही हुआ था ना, कि घर की सफाई करते करते औरत जो है वो अल्लाह ताला के साथ दुआ भी मांगती रहे कि अल्लाह, मैं तो अपने तौर पर जाहरी घर की सफाई कर रही हूं, आप मेरे दिल के घर को साफ कर दी, और इस्तिग़फ़ार करती रहे, माफी मांगती रहे। माफी मांगना भी क्या है, दुआ, राइट। दुआ में आप कुछ मांगते हैं ना अल्लाह से, तो क्या हर चीज मांग सकते हैं, माफी नहीं मांग सकते, क्या माफी मांगने वाली चीज नहीं है, घर मांगने वाली चीज है, बच्चा मांगने वाली चीज है, जॉब मांगने वाली चीज है, और जो है वो ज्वेलरी मांगने वाली चीज है, और खाना मांगने वाली चीज है, व्हाट अबाउट माफी। क्या माफी मांगने वाली चीज नहीं है? हाँ, उसके लिए नहीं है जिसने कभी कोई गलती करी ना हो, जो अपने आप को कसूरवार समझता नहीं हो, वो क्यों माफी मांगेगा? भाई जिसके पास खाना बहुत ज्यादा मौजूद हो वो अल्लाह से खाना मांगेगा? भाई वो तो खा खा के उसका पेट फटा चला जा रहा है, वो तो अल्लाह से खाना नहीं मांगेगा ना, खाना तो ऑलरेडी है, वो कुछ और मांगेगा जो उसके पास नहीं है। यही मामला माफी का भी है, जो समझता है कि जी मैं तो बख्शी बख्शाई हूं और मैं तो बस जन्नत में जो है ना वो रेड कार्पेट वेलकम मिलेगा और मैं जो है वो दाखिल हो जाऊंगी, वो अल्लाह से क्यों माफी मांगेगी? लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर बंदा मुझसे माफिया मांगे, क्योंकि हर बंदा जो है वो खताकार होता है, और नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने बात हमें बार बार समझा दी, कुल्लु बनी आदम खताओ, ठीक है, वखैरुल खताइन अत्तवाब, ठीक है, तो माफी क्यों नहीं मांगते? तो इस वजह से ना अल्लाह ताला से दुआ मांगना, और दुआ में सबसे पहली चीज मांगने की क्या है? माफी, ठीक है। वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह ताला की हमद व सना करके दुआ शुरू करें, लेकिन फिर मांगे क्या सबसे पहले? माफी, अल्लाह माफ कर दी, जो भी चीज मेरे पास कम है, जो भी चीज मेरे पास खराब है, मेरी रिलेशनशिप्स खराब हैं, या मेरा जो है वो घर का मामला खराब है, या मेरा बाहर का मामला खराब है, ये यकीनन मेरे ही गुनाहों का नतीजा है, ये यकीनन मेरी ही गलतियों का नतीजा है, ए अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए इसके, ए अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए इसके, ठीक है ना। डंडा लेके माफी नहीं मांगनी होती, आजिजी और इनकसारी के साथ अल्लाह ताला से माफी मांगनी होती है, अपने गुनाहों के ऊपर नादम और शर्मिंदा होकर, ठीक है। तो माफी मांगनी है, लेकिन अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, कि हम दुआ कर भी रहे होते हैं ना, तो वो दुआ भी जो होती है ना वो दुआ के नाम पर एक धब्बा टाइप की कोई चीज होती है, दुआ नहीं होती, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हो गई ना कि इजी थिंग्स फर्स्ट, तो इजी थिंग्स में हमने नॉन लिविंग थिंग्स को पहले देखा, और उसके बाद पर अब हम लिविंग के ऊपर आ रहे हैं, और लिविंग में सबसे ज्यादा लिविंग कौन है? अल्लाह, हय्युन ला यमूत। तो सबसे पहले तो अल्लाह का हक बनता है कि भाई हम जब लिविंग थिंग्स के ऊपर आए या लिविंग हस्तियों के ऊपर आए तो अल्लाह सबसे पहले, और फिर इज इन थिंग्स फर्स्ट वाला उसूल यहां पर भी अप्लाई होता है कि अल्लाह से ताल्लुक बनाना सबसे ज्यादा आसान, लेकिन अब कैसे बनाना है अल्लाह से ताल्लुक ना, तो उसके लिए क्या बात करी? दुआ, ठीक है। लेकिन दुआ का मामला ये है कि हमने एक तो हमने अल्लाह ताला से सबसे पहले माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन खाली माफी मांग लेना ये काफी नहीं है। क्यों? इसलिए कि माफी जो आपने मांगी है तो वो गलतियों के ऊपर माफी मांगी है ना, ठीक है, लेकिन अब गलतियों को हमने ठीक भी तो करना है ना, ठीक है, गलतियों को हमने ठीक भी करना है। तो इस वजह से माफी मांगने के साथ साथ जो दूसरी चीज हमने अल्लाह से मांगनी है वो गलतियों की इसलाह के लिए मदद मांगनी है, ठीक है, गलतियों की इसलाह करने के लिए मदद मांगनी है, ठीक है, कि ऐ अल्लाह जिन गलतियों की वजह से मेरे ऊपर ये मुश्किल हालात आए हैं, मेरी रिलेशनशिप्स खराब हुई हुई हैं, ठीक है, अल्लाह करे वो आप लोग जो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में दुखड़ा रोती हैं क्लास भी सुन रही हूँ और दिल के कानों से सुन रही हूँ, ठीक है, कि जो मेरे गुनाहों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से जो मेरे मेरी रिलेशनशिप खराब हुई हुई हैं, तो उनके ऊपर आप मुझे माफ कर दीजिए और उनको ठीक करने में आप मेरी मदद फरमा दीजिए, ठीक है। तहज्जुद के वक्त में उठ करके दुआएं मांगे, फर्ज नमाज के बाद दुआएं मांगे, जो मौका मिले उसके अंदर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, लेकिन इन दो चीजों के साथ, माफी प्लस मदद, यकीन होना चाहिए हमारे दिल में, यकीन माने या ना माने लेकिन होना तो चाहिए ना, कि भाई अल्लाह ताला जो है ना जब वो मदद करने पर आएंगे ना, तो उसके बाद फिर हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर चीज समझ में आ जाएगी, हर चीज अल्लाह ताला समझा देंगे कि अब तुमने जो है ना वो क्या इल्म हासिल करना है, कहाँ से इल्म हासिल करना है कि अपनी गलतियों की इसलाह कर सको, ठीक है, और क्या तुम्हारी गलतियां हैं, कैसे उनकी इसलाह करोगी। तो अल्लाह ताला फिर दुआ के साथ साथ दवा की तौफीक भी अता फरमाए, इल्म के जराए तक भी अल्लाह ताला पहुंचा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला के लिए नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, लेकिन हम अल्लाह से मांगते ही नहीं है, ठीक है? और मांगते हैं तो फिर हम जो है वो ऐसे मांग रहे होते हैं कि जिसके ऊपर जो है ना वो थप्पड़ पड़ना ज्यादा डिजर्व करते हैं हम, बजाय इसके कि हमारी दुआ को कबूल कर लिया, ठीक है? तो ऐसे नहीं मांगना कि हम तो, या कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर चीज के ऊपर कुदरत नहीं रखते, अल्लाह ताला जो है वो इसका हमारे मामला का हल नहीं कर सकते, ऐसे नहीं मांगे, ठीक है? तो अल्लाह ताला से हल हल करवाना है अपने उससे, ठीक है? फिर उसके बाद कोशिश अपनी तरफ से कर ले, ये गुमान रखते हुए कि अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, क्योंकि मैंने मदद मांगी है ना अल्लाह ताला से, माफी मांग करके मैंने अल्लाह ताला से फिर मदद भी मांगी है। अब कोशिश करें, एक कदम बढ़ाएं और आगे देखेंगे अल्लाह ताला कैसे उन कदमों को आसान करते हैं। ठीक है, तो वो फिर हम सीखने का प्रोसेस शुरू करें, ठीक है? दरस कुरान को सुने, गौर से सुने, और उनके ऊपर जो है फिर अपने नोट्स बनाए कि भाई मेरी जिंदगी से इनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, इन बातों की मैंने उनसे सीखना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है। और इसके अंदर एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है, आखिरी बात इस टॉपिक के ऊपर एक बात का बहुत ख्याल रखें कि अल्लाह ताला को मनाने के लिए जो है ना वो जो सबसे अहम प्री रिक्वेस्ट है वो ये है कि मक्कारी नहीं करनी है, मक्कारी नहीं करनी, 420 भी जिसको कहते हैं ना उर्दू के अंदर, ये नहीं करनी, ठीक है? अल्लाह ताला को मक्कारी से नफरत है, ठीक है? तो अब जिनसे हम सीख रहे हैं ना, तो अल्लाह के साथ मक्कारी करनी है, ठीक है, कि दिल में असल में कुछ और है और अल्लाह ताला से जुबान से कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल में जो है ना वो अल्लाह ताला के बारे में कोई गलत नजरिया, कोई ऐसा नहीं, अल्लाह ताला नहीं कर सकते, या बस मैं ऐसी कर रही हूँ, किसी ने कह दिया था दुआ मांगने के लिए इस वजह से मैं दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह ताला के साथ गुमान कोई नहीं, अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो दिल के अंदर ताल्लुक कोई नहीं है, बस ऐसी जो है वो दुआ मांग रहे, तो ये अल्लाह ताला के साथ मक्कारी हो, ठीक है? तो ना अल्लाह ताला के साथ मक्कारी करनी है और ना जिनसे फिर अल्लाह को मनाने का तरीका सीखना है, ना उनके साथ मक्कारी करनी, ना उनके साथ मक्कारी करनी, ठीक है ना? हम ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि या तो अल्लाह के साथ मकारी कर रहे होते हैं, या जो है वो जिनके साथ अल्लाह को मना जिनसे अल्लाह को मनाने का तरीका सीखना होता है ना उनके साथ मकारी कर रहे होते हैं। यकीन करें मकारी के साथ जो है ना वो अल्लाह ताला की मदद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कुछ कर ले नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए, तब अल्लाह ताला की मदद जो है वो रुकेगी नहीं, नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला मदद ना करें, अगर आप खुद से स्ट्रेट हो जाए, हम खुद स्ट्रेट हो जाए, लेकिन हम क्रूकेड रहते हैं, हम क्रूकेड रहते हैं, क्रूकेड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह सीधे, जलेबी खाई है ना कभी, कितनी सीधी होती है जलेबी, हम जलेबी की तरह के सीधे हैं, अपने आप को सीधा समझते हैं, लेकिन जिस तरह जलेबी कर्ल्ड हुई भी होती है ना उस तरह से हम अंदर से हम वैसे होते अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा ना कि आपकी मकारी हो रही है कि नहीं, इन्होंने सवाल लिखा है कि कैसे समझे कि मकारी हो रही है या नहीं, ये तो आपका दिल आपको बताएगा, मैं नहीं बता सकता, ये बड़ी बात है, ठीक है ना? ये इस हदीस मुबारक है ना, इस्तफ्ता कल्बक, अपने कल्ब से पूछो, ये फतवा आप अपने कल्ब से लें, ये हर चीज नहीं क्लास के अंदर समझाई जाती, मकारी का तो इंसान को पता चल जाता है, ये तो 100%, इखलास का भी इंसान को पता चल जाता है कि वो मुखलिस है कि नहीं है, और मकारी का भी इंसान को पता चल जाता है कि वो मकार है कि नहीं, ठीक है ना? ये कोई क्लास में सीखने वाली चीज है। अच्छा, तो इसके बाद फिर मकारी वाली बात भी हो गई, ठीक है? आसान, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आसान चीजें पहले करनी होती हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक सबसे पहले बनाना है, फिर उसके अंदर कैसे ताल्लुक बनाना है, तो दुआ के साथ ताल्लुक बनाना है, ठीक है? और अल्लाह ताला से हर चीज की तौफीक मांगनी है, माफी के साथ साथ मदद मांगनी है, वगैरह वगैरह सारी बातें, और मकारी से बचना, ठीक है? अब उसके बाद जो है ना वो किताब में हजरत ने लिखा है कि आम आम औरतों पर, औरतों की जिंदगी का, आम तौर पर औरतों की जिंदगी का सबसे वीक पॉइंट यही होता है, कमजोर पहलू यही होता है कि वो महरम रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात सही नहीं कर पाती, सही नहीं रख पाती। ठीक है, गैर महरम रिश्तेदारों के साथ तो ताल्लुक की जरूरत ही कोई नहीं है, इस वजह से हजरत ने यहाँ पर महरम का लफ्ज ऐड कर दिया ताकि किसी के जहन में ये गलत फहमी ना हो कि मेरा कजन के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना और मेरा जो है वो किसी और गैर महरम रिश्तेदार के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नहीं सिर्फ महरम की बात हो रही। तो अब उसके अंदर सबसे पहले जो है वो खाविंद के साथ मसला। अब खाविंद जो है वो अगरचे के महरम की तारीफ में नहीं आता लेकिन खाविंद का एक अल्लाह ताला ने ऐसा ताल्लुक बनाया है कि कोई दरमियान में इसकी कोई पर्दा नहीं होता। फिर उसके बाद ये अब खाली महरम के जिक्र, सारे महरमों का यहाँ पे जिक्र नहीं है बल्कि उनके साथ जिनके साथ उमूमी तौर पर खराब ताल्लुक बनाया हुआ है, उनमें सबसे पहले जो है वो खाविंद आ गया। ठीक है, जिनकी शादी हुई भी है अल्लाह ताला उसको शादी खाना आबादी बनाए और उनको हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमाए, तो उनके साथ खाविंद का मामला, और जिनकी शादी नहीं हुई भी है तो वो फिर बाकी जो मैं अनाथ पड़े हैं उनसे कर सकते, या ये कि इनशाला फ्यूचर में जिनको जरूरत पड़ेगी इसकी तो उनको भी इसको बहुत गौर से सुनना चाहिए। तो कहीं खाविन के साथ मसला होता है, कहीं सास के साथ मसला, इसका भी ताल्लुक शादी के साथ ही है कि शादी होगी तो सास आएगी फिर, और तीसरी चीज कहीं औलाद के साथ मसला है। ठीक है, तो फरमाते हैं कि ये मसाइल जिंदगी का बेशतर वक्त जाया कर देते हैं। आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह बहुत सादा सी बातें बताई जाएंगी, आप सुनेंगी तो महसूस करेंगी कि ये तो आम सी बातें हैं मगर हमने प्रैक्टिकली अमली तौर पर इसका नतीजा बहुत अच्छा देखा है, इसलिए इन पॉइंट्स यानी नुकात को यकजा कर दिया गया है, 1 घंटे के बयान में हजरत ने इनको इकट्ठा कर दिया है। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू मस्तूरात दिल के कानों से सुनेंगी और इस पर अमल करके अपनी जिंदगी में खुशियां पैदा। ठीक है, दिल के कानों से सुनना, तवज्जो से सुनना, गौर करना, और खाली एक दफा सुनना नहीं बल्कि इसको जो है वो रिपीट भी करना, इनके नोट्स बनाना। ठीक है, पहले तो खुद अपने तौर पे नोट्स बनाने चाहिए, फिर उसके बाद जब रिपीटेशन यानी तकरार सेशन के अंदर आप लोग मिलती हैं, जैसे जो मिलती हैं वो मिलती हैं, जो नहीं मिलती हैं अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाएगी, वो भी तकरार सेशन ज्वाइन कर। ठीक है, तो उसके अंदर फिर अपने नोट्स को डिस्कस करना और फिर एक फाइनल किस्म का कोई नोट बनाने जिसमें कोई एरर्स ना हो, कोई गलतियां और कोई कमी बेशियां ना हो, तो फिर उनको पढ़ना ये भी दिल के कानों से सुनने में आएगा। ठीक है, और ये सबसे पहला अमल है इल्म हासिल करने। ठीक है, तवज्जो से बात को सुनना। ठीक है, इसी वजह से आगे भी जो है ना, बस हम ये एक लाइन और पढ़ करके आज की बात खत्म कर देंगे कि रिश्ते को कायम रखने वाली 3 अहम चीजें, ठीक है, ताल्लुक को कायम रखने वाली 3 अहम चीज, किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए 3 चीजें बहुत अहम होती हैं, और सोने की स्याही से लिखने वाली बात हजरत ने लिखी है या फरमाई है अपने बयान के अंदर कि नंबर 1 एक नुक्ता है, लिसन केयरफुली कि उसकी बात को आप तवज्जो से। क्या मतलब? जिसके साथ ताल्लुक अच्छा बनाना है, जिसके साथ ताल्लुक, उसको हम और जनरलाइज कर रहे हैं, सिर्फ नसबों व सेहरा तक महदूद नहीं रख रहे बल्कि हम इसको जनरलाइज करके इवन अपने परवरदिगार को उसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, कि जिसके साथ भी आपको ताल्लुक को अच्छा बनाना है, यू मस्ट लिसन टू देम केयरफुली, अल्लाह को सुनना है। अल्लाह को कैसे सुनना है? सबको पता है कैसे सुनना है, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला हमसे बात नहीं करते जैसे उनसे बात करी थी, या ना नबी अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला हमें अपने अर्श पे बुलाएंगे और फिर उसके बाद हमें वहां पे जो है वो अपनी आवाज में हम उनसे बात करेंगे, नहीं, बल्कि हमसे अल्लाह ताला ने बात कैसे करी है, कलाम अल्लाह के जरिए से, कुरान अजीम शान के जरिए से। तो हमने कुरान अजीम शान के ऊपर फोकस करना है, उसको गौर से सुनना है। क्या मतलब? कि उसकी जुबान को सीखना है, उसकी जुबान को सीखना है, कुरान मजीद की जुबान, अरबी जुबान, ये एक ऐसी चीज है जिसको कि हमने जो है ना वो उलमा के लिए मखसूस कर दी है, या जो आलिम कोर्स करेगी या आलिमा कोर्स करेगी उसके लिए है भाई अरबी जुबान सीखेगी, बाकी किसी को अरबी जुबान सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। कि अरबी जुबान किसी और को सीखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अरबी जुबान सीखे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अरबी जुबान किस दर्जे में सीखनी है, बिल्कुल एब्सोल्यूट एक्सपर्ट लेवल पे जाके आपको सीखनी है, या आपको जो है वो काम चलाओ लेवल पे सीखनी है कि बस कुरान सुन करके हमें कुछ अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, या हम तफसीर पढ़ रहे हो, तर्जुमा पढ़ रहे हो, तो हम कुछ समझ पाए कि भाई कैसे तफसीर बन रही है, ये कैसे तर्जुमा बन रहा है, ये बेसिक लेवल की अरबी जुबान है, कुरानी अरबी। ये हर इंसान, हर 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 मुसलमान, देखें आज हम देखते हैं ना कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं आप में से जो के मिडिल ईस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो जो अब आप मिडिल ईस्ट में जो रहते हैं, तो अब आप जरा अपने इर्द गिर्द देखें कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ होता है, आप लोगों का मेल मिलाप किन लोगों के साथ होता है, आप लोगों की पार्टीज, आप लोगों की दावतें किन लोगों के साथ होती है, हमारी मेरी आपकी किन लोगों के साथ होती। क्या इंडियंस जो हैं उनकी सिर्फ इंडियंस के साथ होती है, क्या पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ होती है, क्या बंगाली जो हैं वो उनकी सिर्फ बांग्लादेशियों के साथ होती है, क्या सऊदी जो हैं वो उनकी सिर्फ सऊदियों के साथ होती है, या इससे ज्यादा कोई मामला बहुत आसान सा, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को देखें, इंडियंस एंड पाकिस्तानियों को देखें। ठीक है, किन के साथ आपकी बातचीत होती है, किन के साथ आपका उठना बैठना होता है, किन के साथ आपकी दावतें होती है, क्या सिर्फ इंडियंस के साथ हो रही होती है इंडियंस, क्या सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ हो रही होती है पाकिस्तानियों की, नहीं, किस बुनियाद पे आप लोगों की दोस्तियां बनती हैं, उठना बैठना बनता है, हत्ता कि दावतों की तक नौबत आती है, किस बुनियाद पे बनती है जी, जल्दी से कोई जवाब दीजिए। एग्जैक्टली, लैंग्वेज की बुनियाद पे बनती है, ठीक है ना, बिजनेस पर्पजेस, वो तो फिर बिजनेस वाली बनती है ना, हम तो दोस्तियों और यारियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जिसका ताल्लुक कल्बी कल्ब के साथ होता है, ठीक है ना, मोहब्बतों के साथ होता है, ये बिजनेस के रिलेशनशिप्स नहीं होते, ठीक है, बल्कि जो रिश्ता और पार्टीज और दावतों का भी तो नाम नहीं आया ना, ठीक है, तो ये और इवन खवातीन के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो कि ऑफिस नहीं जा रही उनका, हम तो खवातीन की क्लास कर रहे हैं, तो खवातीन से सवाल किया है ना कि भाई आपकी किसे जो है वो उठना बैठना आप किसके साथ होता है, लैंग्वेज की बुनियाद, राइट, उर्दू लैंग्वेज जो भी बोलता है, बेशक उसको लिखना ना आता हो, उसको पढ़ना भी ना आता हो, लेकिन बोलना और समझना आता है, बस दोस्ती बन जाती है। अब हमारी बिल्डिंग में जो लोग यहाँ पे जानते हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मिलना जुलना किन के साथ है, उर्दू बोलने वाले साथ, अरबी बोलने वाले भी रहते हैं उनके साथ मिलना जुलना नहीं, क्यों, लैंग्वेज की बुनियाद पर। हत्ता कि अगर कोई साउथ इंडिया वाले हो जिनको कि उर्दू बिल्कुल बोलनी और समझनी नहीं आती, उनके साथ भी इंटरेक्शन नहीं होती, किसके साथ होती है जिसको उर्दू बोलनी और समझनी आती। तो ये जो जितने ताल्लुकात बनते हैं ना, इंसानी ताल्लुकात, ये लैंग्वेज की बुनियाद पर बनते हैं, अगर लैंग्वेज बैरियर है देन वो ताल्लुकात ही बने। तो भाई अरबी जुबान जो अल्लाह ताला ने रखी है ना, इस अरबी जुबान की बुनियाद पर ताल्लुकात बनते हैं इंसानों के। आप देखें जब इस्लाम फैला है तो अरबी भी फैली है उसके साथ साथ, लेकिन एक जगह पे जा करके अरबी रुक गई, वो जगह पे नहीं रुकी, वो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से दूरी जितनी बढ़ती गई, तो फिर इस्लाम का फैलाव वो फिर लश्करों की बुनियाद पे तो जारी रहा, लेकिन लैंग्वेज साथ साथ आगे जारी जारी नहीं, ठीक है, तो अब अफगानिस्तान के अंदर, तब जब तक अफगानिस्तान में दीन पहुंचा है इतनी देर हो चुकी थी कि अब अफगानिस्तान में इस्लाम तो पहुंच गया, अरबी जुबान नहीं पहुंची, इवन ईरान के अंदर भी इस्लाम तो पहुंच गया, अरबी जुबान नहीं पहुंची, लेकिन अफ्रीका में आप देखें दूर तक अरबी जुबान पहुंची है, एशिया के अंदर आप देखें नॉर्थ की तरफ जो है, ये जितने ये लोग थे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, ये लोग कोई ताजिक जुबान बोलने वाले नहीं थे, ये कोई उज़्बेक जुबान बोलने वाले नहीं थे, ये कोई तुर्किश जुबान बोलने वाले, सब अरबी बोलना शुरू, ठीक है, फिर भी वहां की अपनी जुबान भी बाकी रही, लेकिन सब अरबी बोलना शुरू हो गए। बिल आखिर अरबी जुबान भी मारपीट करके निकाल दी गई वहां से, और अब जो है वो सिर्फ ताजिक, उज़्बेक और टर्क वगैरह। लेकिन कितना बड़ा एरिया था जो कि प्योर अरब बन गए, हत्ता कि नॉन मुस्लिम भी अरबी बोलना शुरू। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ अरबी नहीं आई, पाकिस्तान की तरफ अरबी नहीं आई, ठीक है, बस उलमा की हद तक आई, उससे ज्यादा नहीं आई, अवाम में नहीं आई। इंडिया में तो बिल्कुल ही अरबी नहीं आई, बांग्लादेश में तो बिल्कुल ही अरबी नहीं आई, सिवाय उलमा के कोई भी अवाम जो है वो अरबी से वाकिफ नहीं होती। तो अब ये जो है ना, ये उम्मत वाला जो तसव्वुर है ये नहीं, ठीक है ना। अब जो है वो ताल्लुक किसके साथ होता है? उर्दू बोलने वाले के साथ होता है, जिसको अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी बोलने वाले के साथ ताल्लुक होता है, जिसको मलयालम आती है उसको मलयालम बोलने के साथ वाले के साथ ताल्लुक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लैंग्वेज इतनी अहम है, और खाली इंसानों के ताल्लुकात के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के कुरान को सुनना, उसका असर होना, उसके लिए भी अरबी जुबान इंतहाई अहम है। तो लिसनिंग जो है ना, ये जुबान से ताल्लुक रखती है। अगर जुबान आएगी तो फिर आप लिसनर बनने की कोशिश कर सकते हैं, अगर जुबान नहीं आएगी तो लिसनर बनने की कोशिश क्या आप नहीं कर सकते। भाई आई एम लिसनिंग टू यू, डू यू नो माई लैंग्वेज? नहीं, आई डोंट नो योर लैंग्वेज, लेकिन आई एम स्टिल लिसनिंग टू यू। है, मुझे सुन करके अच्छी लगती है आपकी आपकी बात, है बड़ी चाशनी है आपकी बात के अंदर, समझ कोई नहीं आती मेरे आपकी बात, तो फिर ऐसे लिसनिंग से क्या फायदा होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला को सुनना, ये हमसे अल्लाह ताला का हुक्म है। फ़ाइज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआनु फ़स्तमिउ लहू व अंसितु लअल्लकुम तुर्हमून, लेकिन हमें तो लैंग्वेज ही नहीं आती, ठीक है। तो लिसनिंग के ऊपर, और लिसनिंग के ऊपर फिर अभी तो खैर बहुत देर हो गई है तो हम यहाँ पे रोकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला के और कुरान मजीद के अंदर इसके ऊपर कि कैसे कैसे अहकाम आते हैं, तो हमने कुरान मजीद की आयत आपको सुनाई, बाकी सारी चीजें तुम छोड़ दो और बहुत तवज्जो से अल्लाह की बात को सुन, ठीक है ना। और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने वईदें भी सुनाई ना, जो बयानात के अंदर पिछले दिनों काफी बात हुई है उसके, हत्ता के रमजान की क्लास से बात शुरू हुई थी कि या अय्युहल लजीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अनहू व अंतुम तस्मऊन, कि तुम सुन रहे हो लेकिन तुम पीठ फेर रहे हो, क्या मतलब, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, कि तुम सुन भी रहे हो लेकिन पीठ भी फेर रहे हो, ऐसे मत बनो तुम। वला तकूनू कल्लजीना क़ालू समिअना वला हुम वहुम ला यस्मऊन, और उस तरह के लोग ना बन जाओ कि जो कहते तो हैं कि हम सुन रहे हैं लेकिन वो सुनते नहीं। यानी तवज्जो से सुनना अल्लाह ताला के नजदीक कितनी अहमियत रखता है, हत्ता कि यहां तक फरमा दिया इन शर्र दवाब बिअंद अल्लाही अस्सुमुल बुकमुल लजीना ला याकुल, ठीक है, कि जो बहरे हैं और फिर जो बहरा होगा वो गूंगा भी बन जाएगा, उसको बात ही समझ बात ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने सुना ही नहीं बात, समझी नहीं उसने बात, आगे से बयान कैसे करेगा। तो उनको फरमाया शर्र दवाब भी, जमीन पर चलने वालों में सबसे बदतरीन वो लोग वो हैं जो सुनते नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन मखलूक कौन है चलने वाली जमीन में, जो के सुनते नहीं है, असुम, ठीक है, और फिर अलबुक, उम्यू नहीं फरमाया जो देखते नहीं है, बल्कि असुम्मु फरमाया, सुम्मु बुकमुन उम्यून, सुना है ना, ठीक है। तो सुनना, बीइंग एन एक्टिव लिसनर, ये हर रिलेशनशिप के लिए सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। और फिर अल्लाह के बारे में तो बात अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में मुकम्मल हो गई, अगली क्लास के अंदर हम और रिलेशनशिप्स के साथ भी इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमाए, गलतियों कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और अपने सही मानों में पसंदीदा बंदे और बंदियों बनने में हमारी मदद फरमाए। वाह।